ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
திக்தா ஹே தோ, யே தோ நஹி கிந்து ஏக ஹி. தோ ஜோ திக்தா ஹே தோ நஹி ஏக ஹி. தோ கோ உத்தேஷ்ய கர்கே दोनों द्वित्व का निषेध करके एकत्व का विधान होता है. शास्त्र में, वेद में द्वैत का भी कथन कहीं कथन किया गया, अद्वैत का भी कथन किया गया, आकाश आदि की सृष्टि कही गई. अभी द्वैत का कथन किया, अद्वैत का कथन किया, तो किसमें शास्त्र का तात्पर्य है? शब्द प्रमाण होता है अज्ञात ज्ञापक. जो आप नहीं जानते उसको शब्द से कहेंगे तो आपको ज्ञान होगा, और जो जानते हैं उसको यदि कोई शब्द से कहता है, बहुत कहता है, उस सुनने वाला सुनता नहीं, हमको पता है क्या कह रहा है, वो ज्ञापक ज्ञान जनक नहीं होता. वो ज्ञान पहले से आप कहे, जो ज्ञान आपको पहले से उसको कोई शब्द से कहेगा तो ज्ञान अधिक नहीं होता. पहले से हमको ज्ञान है, बल्कि शब्द को अनुवाद कहते, व्यर्थ कहते, छोड़ो, हमको मालूम है. शब्द प्रमाण होगा तभी यदि अज्ञात का ज्ञापक होगा. ज्ञात ज्ञापक होगा तो उस शब्द को प्रमाण नहीं करते ही, कहते ही. प्रमाण होता है प्रमा का जनक होगा, तो ज्ञान यथार्थ अनुभव का जनक होगा तो प्रमा कहेंगे. जब हमको मालूम है उसको कोई कहेगा तो हमको शब्द से कोई अलग ज्ञान नहीं होगा. हमको मालूम है ये पुष्प है, कोई कहेगा ये पुष्प है तो पुष्प कहेंगे तो उसी शब्द से हमको ज्ञान है, हमको प्रत्यक्ष है. पुष्प हमको आपको प्रत्यक्ष दिखता है, और कोई कहेगा ये पुष्प है, इस शब्द से फिर पुष्प का ज्ञान होगा, और ज्ञान तो पहले से ही, तो शब्द व्यर्थ हुआ, इसलिए उसको प्रमाण नहीं कहते. प्रमाण शब्द वही होगा जो ज्ञान जनक हो. ज्ञान जनक तभी होगा जो अज्ञात हो, तद विषय का शब्द प्रयोग करे तो ज्ञान जनक होगा. जो ज्ञात है, दिखता है, उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे तो कोई अपूर्व ज्ञान नहीं होता, ज्ञान पहले से, उस शब्द को कहते अनुवाद. तो जो प्रसिद्ध है उसको अनुवाद करते हैं, जो अप्रसिद्ध है उसका विधान करते हैं. जो दिखता है, कोई व्यक्ति आए सबको दिखता है, देखा करे तो ऐसा वैद्य, ऐसा विद्वान. जो दिखता है वैद्य है, ये विद्वान है, ये ऐसे कहकर देखा तो ऐसा शास्त्रज्ञ, ऐसा कहकर ऐसा कहकर जो दिखता है उसको देखा दिया, और सबको मालूम नहीं ये वैद्य है, कहते ये तो वैद्य है. तो सबको जो ज्ञान नहीं उसको बताना है ये वैद्य है. और जो व्यक्ति दिखता है, दिखता है, ये दिखता है, वो तो दिखता है, जो दिखता है उसको अनुवाद करेंगे ये वैद्य है. तो द्वैत प्रपंच सबको दिखता है, उपदेश नहीं करेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, तो चंद्र सूर्य घटपट पृथ्वी जल ये भेद अलग अलग दिखेगा है? उसके लिए वेद पढ़ने की आवश्यकता है? भेद दिखता है, कटा मीठा मनुष्य पशु पक्षी जड़ चेतन सब दिखते हैं. इसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं. जो भेद प्रपंच दिखता है उसका अनुवाद करके ये नहीं है ब्रह्म है, सर्वम कलिदम ब्रह्म, इदम सर्वम जो दिखता है इसे नाना रूप नहीं है, ये तो एक अद्वितीय ब्रह्म है. इदम सर्वम जो दिख रहा है अनेकात्मक, उसका उद्देश्य अनुवाद करके जो आप अनेक रूप देखते हो वो नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म है. जिसको आप सर्प समझकर डर रहे हो वो तो रज्जु है, सर्प रज्जु है. सर्प रज्जु का तो सर्प जो होगा रज्जु कैसे? यदि रज्जु है तो सर्प कैसे? हम कहते सर्प रज्जु है, ये वाक्य प्रमाण होगा, ये वाक्य प्रमाण है. सर्प रज्जु वाक्य प्रमाण है, कैसे प्रमाण है? सर्प जिसको आप समझते हो वो सर्प रज्जु है, अर्थात सर्प नहीं किंतु रज्जु है, ये उसका अर्थ है. कहा जाता है सर्प रज्जु, जिसको तुम सर्प समझते हो सर्प नहीं किंतु रज्जु है, ये कहने के लिए वो सर्प रज्जु है. सर्प को उद्देश्य किया, सर्प का विधान नहीं किया. सर्प आपको दिखता है, वो हम उसको दिखाते नहीं. जिसको तुम सर्प समझते हो वो तो रज्जु है. इस प्रकार जो अनेक रूप दिखता है वो ब्रह्म है. ब्रह्म तो एक अद्वितीय है, अनेक रूप ब्रह्म कैसे होगा? अनेक रूप जो दिखता है वो ब्रह्म, ये वाक्य प्रमाण है. सर्वम खलु इदम ब्रह्म, चांदोग्योपनिषद में
वाक्य प्रमाण कैसे होगा? सर्वम जो दिखता अनेक रूप दिखता है, वस्तुतः अनेक रूप नहीं है किंतु अद्वितीय ब्रह्म है। तो जो प्रत्यक्ष दिखता उसका अनुवाद करते हैं, और जो अज्ञात है उसका ज्ञान कराते हैं कि अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, और जो अनेक रूप दिखता है मिथ्या झूठा है। अनेक रूप वास्तव नहीं किंतु वास्तव अद्वितीय, ये कहने के लिए अद्वित तत्व एक है अद्वितीय, जिससे भिन्न कुछ भी नहीं। ये किस प्रमाण से? चक्षुरादि प्रमाण से दिखता है, एक अद्वितीय तत्व है करके। शास्त्र यदि प्रमाण नहीं होगा क्या प्रमाण है इसमें? कोई कहेगा मैंने देखा कहेगा तो कोई मान लेगा? शास्त्र प्रमाण है अद्वैत तत्व के लिए। अद्वैत प्रपंच को देखने के लिए शास्त्र प्रमाण है? शास्त्र के बिना द्वैत प्रपंच दिखेगा? पूरा दिखता है सब। इसलिए द्वैत का अनुवाद करते हैं, अद्वैत का विधान होता है। ये सर्व जो दिखता है अद्वितीय वो ब्रह्म है। इसी प्रकार यहां दो, एक आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, चाक्षुष पुरुष, समानते में अलग, उपास्य मेरे से अन्य है, आगे से में आएगा। भेद के अनुवाद करके अभेद का विधान करते एक ही है। वो जो आदित्य मंडल पुरुष है वही चाक्षुष पुरुष है, दो नहीं है, एक ही पुरुष है। दो दिखता है, दो लगता है, उसका अनुवाद कर कहते वही एक है। स्थान के भेद से एक आदित्य मंडल में एक चक्षु में है, यहां भी है तो वहां भी है, तो दो होगा। घड़ा के अंदर आकाश है और मठ के अंदर आकाश है तो दो हो जाएगा, एक ही आकाश है। घड़ा के अंदर भी, मठ के अंदर, घटा आकाश है, मठ आकाश है, चक्षु में भी हुई वही भी है, वहां है, एक ही आकाश है, घड़ा के अंदर बाहर है, एक ही चाक्षु पुरुष चक्षु में भी है वहां भी है, और बीच में नहीं है क्या? सर्वत्र है। सर्वत्र होने पर चिंतन उपासना करने के लिए चाक्षु में है वहां है, तो एक ही तत्व सर्वत्र, यही बताने के लिए दो का निलया, भेद शंका निवृत्ति के लिए कहते तो वही एक ही है। अरे चाक्षुष पुरुष में क्या सामर्थ्य है? आदित्य मंडल पुरुष में कहा उसके ऊपर लोक देवताओं का भोग्य, उसका ईश्वर वो मालिक है, उसका धारण करने वाला, इसके लिए कहते सये सये चे तस्मादर्वांच लोकास्ते सांचेस्ते मनुष्य कामानांचेति तद्य इमे वीणाया गायन्ति तन्ते गायन्ति तस्माते धनसनयः। ये चे तस्मादर्वांच लोका, यहां से नीचे जितने लोक है, पृथ्वी मंडले में है हम, आगे सात पाताल है, वहां जितने है तेषां चैष्टे, तेषां ईश्वर ये ईश्वर होगा, एक ही चेतना उपाधि से भिन्न हुआ। आदित्य मंडल रहकर ऊपर लोगों का भी धारण करने वाला, यहां रहकर के नीचे सब का धारण करने वाला, नीचे सब लोक भोग्य का भी ईश्वर है, मनुष्य कामानाम च, और मनुष्य के भोग का भी वो मालिक है। इति तद यह इमे वीणायां गायन्ति, जो वीणा वादन करके गान करते, वीणा वादन करते ऐसे वाद्य बजाते बिना, ये वीणा वादन जो करते हैं, गान करते हैं, वो क्या करते हैं? एतम ते गायंती, इसी परमात्मा का ही गान करते हैं। वीणा बजा कर गान करते तो एतम इसी परमात्मा का ज्ञान करते, इस परमात्मा का गान करने से तस्माते धन सनय, इसलिए वो धनी है होते, धन सनय धन के लाभ वाले होते, धन प्राप्त करते, संगीत बोलने वाले, वीणादि वादन करने वाले बहुत धन प्राप्त करते हैं, वो सीखते से बजाते हैं, लोग धन देकर सुनते हैं। क्यों? ये परमात्मा का ही गान करते हैं। वस्तुतः जो संगीत शास्त्र है, ये एक शास्त्र है संगीत, जैसे शास्त्र है आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये संगीत शास्त्र भी एक है, ये सामान्य नहीं है। जो जानते पढ़ते वो संगीत में बहुत उसमें सीखने का विषय है, स्वर के विषय में जानने का बहुत है, सारे गामा पाधा करते, प्रत्येक स्वर का अलग अलग भेद, सामान्य कोई हारमोनियम से बजा लेते बोलते थे कर देते, किंतु उसका जानना है क्या स्वर, उसमें सब बहुत प्रकार है, विभिन्न प्रकार है शास्त्र है, तो उसका तात्पर्य क्या है? सर्वत्र सब का तात्पर्य है परमात्मा प्राप्ति है। जो संगीत शास्त्र इसमें भी मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, ये नहीं कि अच्छा बोलकर लोगों को सुनाना इतने मात्र से पर्याप्त नहीं हुआ, उसमें अलग अलग रस से बोलना, अरे बोलने का किस प्रकार बोलना, किस प्रकार भक्ति होती, किस समय कैसे बोलना है, ऐसे करके बोलते समय भी परमात्मा की प्रार्थना। आयुर्वेद शास्त्र में जड़ी बूटी लाते हैं, जड़ी बूटी लाकर बनाते हैं, उस करने के लिए भी उपासना करनी पड़ती है। जड़ी बूटी जब पेड़ उखाड़ते हैं, पेड़ भी एक जीव है, उसका उखाड़ते दोष लगता है, इसलिए उसके पहले प्रार्थना करके प्रायश्चित करके प्रार्थना करेंगे, उसको लाते हैं, किस समय लाना, किस प्रकार प्रार्थना, कैसे पूजा करनी करके लाना होता है। ये सीखने वाले शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, ये संगीत शास्त्र हो, उनको उपासना करनी पड़ती है। उपासना के बिना शास्त्र में प्रगति नहीं होती है। ऐसे तो उपासना संगीत शास्त्र करने के लिए अभ्यास करते ही, उसके साथ साथ आज जो लोग भिन्न धीरे धीरे उपासना नहीं करके निषिद्ध भोजन करके कोई बोल देते कुछ होता है, किंतु वस्तुतः वो संगीत वास्तव संगीत नहीं है। जो संगीत बोलने से लोक मन में भक्ति आ जाएगी, जो संगीत के द्वारा परमात्मा की प्रार्थना होती, लोग बोल करके भावुक होकर प्रार्थना करते, वो संगीत शास्त्रीय संगीत इस शास्त्र में किस रस से बोल करके बोलते समय इसे बोलना है, अपने आप ही इसे भाव आ जाए। करने वाले अभ्यास करने वाले करते कराते हैं, और नहीं जानकर थोड़ा आधुनिक अलग अलग हो जाता है। जो संगीत शास्त्रीय है उसमें इसे लय विभिन्न है, बहुत जानते हुए जानने वाले सारा जीवन कोई एक शास्त्र में लगे तो उसमें अंत प्राप्त नहीं करेगा। थोड़े बहुत करके गला अच्छा कुछ बोल दिया, इतने में सब चलता है, किंतु उसमें गहराई में देखेंगे, विचार करेंगे, बहुत कुछ सीखना है। जी वीणा वादन करते हैं, वीणा वादन करते तो परमात्मा का ही गान करते, परमात्मा की स्तुति करते हैं, इसलिए धन प्राप्त करते हैं। अथ ये तदेव विद्वान साम गायत्युभौ स गायति स्वामुनैव स एष ये चामुस्मात् परांच लोका तासां चाप्नोति देव कामांश। जो विद्वान इस प्रकार उद्गीत को जानता है, आदित्य मंडल में है और चाक्षुष पुरुष है, चाक्षुष और आदित्य दोनों एक समझ करके उभौ स गायति, दोनों ही गान करता है। जो वीणा वादन करता है दोनों परमात्मा के एक ही दोनों दो रूप से स्थित है एक ही। अमुना आय वस्त इससे उसको भी चिंतन करता है, यहां जो इसकी उपासना करता है आदित्य मंडल पुरुष की उपासना करता है, आदित्य मंडल पुरुष की उपासना करता है तो इसकी उपासना करता है, क्योंकि दोनों एक ही। ये चमुस्मात परांचलो का जो चाक्षुष पुरुष की उपासना करता है, सूर्य मंडल के जितने ऊपर में भोग है उनको भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दोनों एक है। पहले क्या कहा था, सूर्य मंडल उपासना करने वाले उसके ऊपर सूर्य भगवान सूर्य मंडल में स्थित आगे लोक के काम भोग्यों का मालिक है, और चाक्षुष पुरुष नीचे का है, किन्तु दोनों एक होने से जो चाक्षुष पुरुष का ही गान करता है उपासना करता है वो आदित्य मंडल के ऊपर जो भोग उसको भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दोनों एक है। त्यासाम चापनते सब कामों को प्राप्त करता है, देव कामांश देवताओं के भोग्यों को भी प्राप्त करता है, यहां भी नीचे को प्राप्त करता है ऊपर प्राप्त करता है जो इसकी उपासना करते हैं। अर्थात दोनों के एकत्व चिंतन की उपासना करने से सारे ब्रह्मांड का अधीश्वर परमात्मा उसकी उपासना करता है तो सब प्राप्त करता है। अथवा नैव ये चेतस्माद् अर्वांश लोकाश तांश चाप्नोति मनुष्य कामांश तस्मादुहैवं विदुद्गाता ब्रूयात कौन्ते कामम आगायानी श्येत एष एव कामागान श्रेष्ठे एवं विद्वान साम गायति साम गायति। अनेनैव ये च एतस्मा अर्वांश, ऊपर भी यहां उपासना करके सूर्य मंडल के ऊपर भोग प्राप्त कर लेता है, और इसके नीचे जो आदित्य मंडल पुरुष की उपासना करने वाले केवल ऊपर भोग प्राप्त करता है ये बात नहीं, नीचे जो पाताल में जितने उनको ही प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कामांश अर्थात देव काम मनुष्य काम, ऊपर लोक प्राप्ति नीचे की सारे ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है। तस्मादु एवं भी तो उद्गाता ब्रूयात, ऐसा जो उपासना करने वाले उद्गाता यजमान से बोले, यजमान से पूछे तुम्हारे लिए क्या मैं काम प्राप्त कराऊं। जो उद्गान करने वाले ऋत्विक होते हैं, उपासना करना चाहिए, उपासना करते हैं, उपासना करने से उनके पास सामर्थ्य आता है, तो ब्राह्मण जो कर्म करते यदि ठीक शास्त्रीय विधान के साथ उपासना करते हैं, उनके पास सामर्थ्य होता है, यजमान से बोलेंगे तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या मैं तुमको देऊं। कौन ते काम आगाया नहीं थी, क्या मैं आगान करके तुमको प्राप्त कराऊं, किस भोग्यों को प्राप्त कराऊं, ऐसे उद्गाता बोले। वेद भगवान कहते उद्गाता ऐसे बोले, कौन ते काम आगाया नहीं, ते तुम्हारे लिए कौन सा काम है आगान कर प्राप्त कराऊं। इति ऐसे हेव काम आगान से इष्टे, वही जो उद्गाता उपासना करने वाले काम इच्छा से आगान के ईश्वर है, ऐसे गान करके प्राप्त करा दे, उसके पास सामर्थ्य है। एवं विद्वान साम गायती साम गयाती, ऐसा जो विद्वान उपासना करने वाले साम गान करता है वो समर्थ है भोग प्राप्त समय अपने लिए यजमान के लिए करा सकता है। अर्थात इस उपासना करने वाले में ऐसी सामर्थ्य होता है, जो उपासक है उसके पास सामर्थ्य जो चाहे प्राप्त कर सकता ब्रह्मांड के अंतर्गत, और जो नहीं चाहता है हमेशा ही वैराग्य का ध्यान रखना। ब्रह्मांड सब प्राप्त कर दिया कहते समय मन में अच्छा लगता है कि हमको मिल जाए, थोड़े देख ले उधर घुमाए ब्रह्मांड आदि क्या ब्रह्मलोक आदि। बहुत लोग कहते हम ब्रह्मलोक नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते मालूम है, यहां तो देश विदेश घूमना चाहते, ब्रह्मलोक क्यों नहीं चाहते, वहां विश्वास नहीं होता कोई ब्रह्मलोक होगा करके, यहाँ है अमेरिका तो थोड़ा देखकर आ जाएंगे, इंग्लैंड विदेश घूमकर आ जाएंगे। ब्रह्मलोक कोई क्या है, उसमें कैसा भोग है क्या है पता चलेगा, जो लोग देश विदेश घूमते हैं वहां जाने की इच्छा नहीं करेंगे। यदि जाने की संभावना है, कोई साधन है और क्या है पता चले तो जाने की इच्छा नहीं करेंगे। अभी ग्रह उपग्रह भेजते हैं, यदि कोई ग्रह उपग्रह में जाने की व्यवस्था होगी कुछ हो गया लोग तुरंत कहेंगे टिकट करेंगे हम जाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करे जाने वाले लोग को मिल जाएंगे, बहुत लोग अन्य ग्रह में जाते निकले प्रकट बेहते ना, यदि कहीं कुछ हो जाए तो घूमकर आएगा निकले तैयार हो जाएंगे, बहुत लोग जाकर दो चार दिन रहकर आना भोजन आदि व्यवस्था करेंगे और प्रकट मिलेंगे, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे करोड़ों करोड़ रूपया देकर जा सकते हैं। ब्रह्म लोग जाने के लिए इच्छा नहीं होती, क्यों ऐसे ब्रह्म लोग में विश्वास नहीं, और आगे मरने के बाद क्या हुआ सोच नहीं पाते, नहीं तो स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते करते अभी भी करते हैं करते हैं आगे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पितृ लोग स्वर्ग में जाते हैं पुण्य कर्म करने वाले, कभी कभी उनको बुलाते पूछते तो कहते स्वर्ग में ही करके, तो इसी प्रकार स्वर्ग जाते हैं तो आगे ब्रह्म लोग जाने की इच्छा होगी, तो ये कामना होने से प्राप्ति होती। किंतु जो मुमुक्षु है विचार करता विवेकवान, ये भोग प्राप्त करने के बाद भी भोग समाप्त हो जाएगा फिर आना पड़ेगा, ऐसे कितने भोग हो गए किंतु हमको चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, वो लक्ष्य को भूले नहीं, काम्य प्राप्ति कामना की पूर्ति, और ऐसे बड़े बड़े माया के सब जितने सब माया के अंतर्गत है उसके नाम सुनने से मन में आ जाते कि थोड़ा देख ले इदम में स्यात इच्छा हो जाती है, किंतु उसमें सावधान रहना चाहिए लक्ष्य हमारा क्या है, भूल जाते हैं जाते हैं कहीं लक्ष्य जाने के लिए रास्ता में कि दूसरे रास्ता में चले गए, किस उद्देश्य से घर से निकला, घर से निकला कहीं जाने के लिए रास्ता में कहीं कुछ देखा देखकर खुश होकर उसके पीछे चलने लगा, उधर कुछ दिखता बहुत लोग चलते उधर जाकर गया उधर जाकर बैठ गया, तो उसको बुद्धिमान कोई कहता है जिस उद्देश्य से गया था वो लेकर आना है, सामान्य कोई चीज के लिए भले ही कोई सब्जी के लिए बाजार गया वहां नहीं जाकर दूसरे थाने जाकर गए कुछ कुछ दे करके रुपया खर्च करा गया, उसको क्या कहेंगे मुर्खा कहेंगे बेवकूफ कहेंगे, गया थे किस काम में क्या करके आया, रुपया लिया था खर्च करके कहीं आ गया कहीं कुछ होटल में कुछ खा करके आ गया, गया था कुछ लाने के लिए, इसलिए लक्ष्य अपना क्या है किस लिए आए इसको भूलना नहीं चाहिए उसमें चलना है, भूल जाते हैं, भूल जाना तो यही है कार्य भ्रंश ही मूर्खता, अपने कार्य अपने सिद्ध नहीं कर पाते ही मूर्खता है। अभी इसमें शास्त्र के विषय में तो ज्ञान थोड़ा होता है समझते हैं, किंतु ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए इसके लिए इसके परस्पर विचार की आवश्यकता होती है, सत्संग में मिल करके विचार करें। अभी हम सुना यहां भी बहुत में इसे भक्त में कहीं पढ़ते हैं फिर बाद में आपस में पठन पाठन करते हैं, ये देखा कोई जाकर किसको पढ़ाते हैं कहीं पढ़ते हैं कहीं पढ़ाते, में देखा सब अलग अलग स्तर करके मिल करके पाठ करते चलाते हैं। यह भी पता चला ये लोग पढ़ते थे कहीं पढ़ाते है, वो कोई पढ़ते हैं कहीं पढ़ाते है, कोई पढ़ने पढ़ाने वाले गए थे हमारे पास ऋषिकेश में ज्ञान यज्ञ में, वो पढ़ाते बहुत लोग पढ़ाते बहुत अच्छे समझदार है, बड़े बड़े समझदार व्यक्ति यहाँ है ना नाम तो हमको याद नहीं, बड़े अच्छे समझदार पढ़े हुए है पढ़ाते हैं लोग उनके पास बहुत कभी होते हैं। इसी में शास्त्र में आया ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग भी मिल करके विचार करते थे, अरे विचार आवश्यक करना ही चाहिए। निधिध्यास में आया तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यन्यम तत्प्रबोधनम ये तदेक परत्वंच ब्रह्मा व्यासम विदुर बुधा। तत्चिंतनम पर ब्रह्म का चिंतनम और तत्कथनम भिन्न भिन्न अलग संसार की बात करते उसके बिहार परमात्मा के ऊपर बात करे तो अच्छा है, और अन्यन्यम तत्प्रबोधनम परस्पर उसको बताना, परस्पर प्रश्न उत्तर करेगी। एक महापुरुष थे ऋषिकेश में, बहुत ही विरक्त थे, कोई उनके पास आने पर उनका मुख्य ही है वो शास्त्र के विषय में विचार करना। ऐसे कोई आने पर कहें ना पानी देंगे शरबत देंगे चाय देंगे ये प्रश्न, वो आएंगे बैठेंगे बोलते महाराज जी हमारे को ये संशय है ये शास्त्र ये थोड़ा पंक्ति हमको नहीं लगती इसको थोड़ा बताइए, नहीं तो पूछेंगे। वहां इसे कहा गया चाक्षुष पुरुष दिखता है, कहां चाक्षुष पुरुष दिखता क्या है, जैसे पाठ जिस अभी आए ना ऐसे कहेंगे पाठ में आए साकी से पुरुष दिखता है और उसको इस आदित्य पुरुष एक कहा ये कैसे हो सकता है। पूछने के बाद बड़े नम्रता से पूछेंगे, मुझे जानते थे कुछ बोलेंगे, फिर कुछ बोलने के बाद इतने सज्जन है इतने निरभिमानी है किसी को भी वो पूछेंगे और उसके बाद वो बोलने के हाँ हाँ आपने कहा अभी हमको स्मरण हो गया ये कहेंगे जानते हैं बोले हाँ गुरुजी ने हम बताया था आपने कहा ठीक है करके बोले ये जो चाक्षुष पुरुष है ये तो उपाधि को लेकर भिन्न हुआ वो तो अलग है वस्तु तो एक है दोनों उपासना ऐसे करके फिर विचार ही करेंगे। ये आप कहीं पढ़ेंगे तो अखंडानंद जी स्वामी जी उनके पास गए थे, इनका नाम स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज कोलासा से पास में थे उत्तर काशी में, अखंडानंद जी गए थे कहीं बैठ कर भक्त सामने कुछ बोल रहे थे, ब्रह्म प्रकाश जी आकर के जैसे बैठे ऐसे कहीं नीचे प्रणाम कर बैठ गए। जब बैठ गए कोई आकर के अखंडानंद जी को कहा स्वामी जी ये ब्रह्म प्रकाश जी, तो वो ब्रह्म प्रकाश का नाम तो सुना था बहुत पुरानी बात नहीं आश्रम के पास में उनके भक्त अभी जो उनकी सेवा करते थे भक्त और भक्त अभी हमारे पास आते हैं अभी कुछ साल पहले गए, तो ब्रह्म प्रकाश जी फिर उठकर जा करके उनको प्रणाम कर उठाकर ला करके वो नहीं उठते ला करके अपने आसन पर बैठाए। फिर दूसरे दिन अखंडानंद स्वामी जी पौलाद लेकर उनके पास गए थे, इतने विरत बहुत विरत थे उनके कुटिया में जब तक थे बिजली लगाने के लिए कोई बाद में कहा वो मना किया बिजली नहीं चाहिए बहुत विरत थे ऐसे, तो ही उनका था कोई आने पर ये बात शास्त्र चिंतन करना है कुछ प्रश्न कुछ उत्तर अन्योन्यम तत्प्रबोधन प्रश्न पूछेंगे कुछ बोलेंगे ये बोलेंगे किसी प्रकार। अच्छा पूछने पर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको नहीं आता है बिजली होगी अथवा वो बताते हैं ऐसा भी नहीं लगेगा क्योंकि उनको सम्मान से पूछेंगे, फिर कहा आपने याद दिला बड़ी कृपा की हमारी याद आ गया कहेंगे वही किंतु किसी प्रकार विचार शास्त्र का विचार ही करना है और कुछ नहीं। इसलिए परस्पर अनुन्यम तत्प्रबोधनम ए तदेक परत्वंच निरंतर उसमित इसका नाम ब्रह्मा व्यास। निधिध्यासन करने के लिए खाली आसन लाकर बैठ करके स्थिर हो जाए आंख बंद करके कमरा बंद करके धूप दे इतने मात्र नहीं है किंतु चिंतन निरंतर होना चाहिए। ये ब्रह्म प्रकाश जी के कोई जीवन में पुस्तक में मैं पढ़ा था, ये हमारे पास पुस्तक अखंडानंद जी के पुस्तक में कहीं हुआ नहीं मुझे मालूम नहीं, सत्य घटना है उत्तरकाशी में ब्रह्म प्रकाश जी महाराज थे पहले महापुरुष में इसे था अभिमान का अभाव निराभिमान, कोई कई महापुरुष है तो उनके पास जाएंगे। ब्रह्म प्रकाश जी का ऐसा भी था चलते हैं कोई महात्मा कहे चलो उनके दर्शन कर लेंगे, चलते समय भक्त लोग कहेंगे बोले ये हमारे महाराज जी कितने बड़े वो तो साधारण महात्मा बैठे कहे महाराज जी होता है इसे सामान्य बैठे अरे कोई नहीं महात्मा बैठे तपस्या करे थोड़ा दर्शन तो कर लें। कभी चलते समय वहां जाना था वो लोग नहीं बताए आगे चल गए, फिर पूछा ये बाबा एक महात्मा वहां कहा है ना महाराज जी होता रास्ता छूट गया चला गया कितने दूर नहीं चलो चलते क्या होता है वो आपस आकर के उनके पास जाएंगे, जाकर प्रणाम करेंगे, पूछेंगे, बैठेंगे। कोई महात्मा है तो तपस्या कर रहे तो उनके पास जाना चाहिए, उनका ऐसा नियम। तो इसे परस्पर मिलकर के विचार करने की आवश्यकता है, ये श्रुति में देखो है। त्रयो हो उद्गीते कुशला बभुवो शिलक शालावत्यताय नो दालभ्य प्रवाहनो जैविली ते हो चुरुद्गीते वही कुशला स्मो हंत उद्गीते कथा वदाम। त्रय तीन उद्गीत के विषय में कुशला बभू कुशल हुए थे किस समय, जैसे इस समय कोई प्रसिद्ध है संगीत में शास्त्र में हो, किस में अभी प्रसिद्ध है, हमेशा ही वही है ऐसा नहीं, किस समय कोई होते, पहले कभी कुशल कोई थे वो चले गए, अभी कोई कुशल है ये फिर चल जाएंगे, आगे कोई होंगे, ऐसे सब में संगीत बोलने में खेलने में शास्त्र में किसी विषय में किस समय कोई उत्कृष्ट, तो कुछ समय में तीन कुशल थे, तीन उद्गीत विषय में, एक का नाम शिलक और उनको शालावत्य कहते, उनके पिता के नाम था शिलावत शलावत, शलावत का पुत्र उनसे शालावत्य हो गया, पिता का नाम था शलावत, नाम है शिलक। दूसरा है चैकितायन दालभ्य, दलभ नाम कहते थे उनके गोत्रा पुत्र है, और चिकितायन का पुत्र उनसे चैकितायन हुआ द्वितीय हुए, और तृतीय होते प्रवाहन उनका नाम, जीवल के पुत्र उनसे जयबिली नाम पड़ गया, जीवल का पुत्र जयबिली, तो तीन हो गए शिलक दालभ्य और प्रवाहन, तीन ही दो दो नाम दिया, शिलक शालावत एक है, चैकितायन दालभ्य एक है, प्रवाहन जयबिली एक है, नाम तय के और एक पिताजी के अनुसार नाम पड़ जाता है, अभी भी कोई के नाम में पिताजी का नाम पिताजी कुछ मिलाकर कहते, तो प्रवाहन थे जयबिली। तेह उच्च तो मिलकर के विचार किया, उद्गीत वही कुशला स्म, हम लोग से उद्गीत के विषय में जान बड़े कुशल है, विचार करते निपुण है, ये लोक में प्रसिद्ध, सब लोग हमको मानते, हम बड़े प्रसिद्ध उद्गीत में कुशल, तीनों परस्पर कहते हम कुशल है, लोग में प्रसिद्ध है, सब लोग को कहते कि तीनों बड़ा अच्छे जानने वाले है, ऐसा लोक में हम तो प्रसिद्ध है, जब प्रसिद्ध है तो क्या करना है, लोक में प्रसिद्ध है लोग अच्छा कहते झगड़ा करने के नहीं, तो क्या करते हैं, हम तो उद्गीत कथा बदाम, अभी उद्गीत विषय में थोड़ा विचार करेंगे, विचार करने से क्या लाभ होगा, विचार कैसे करेंगे, पक्ष प्रतिपक्ष का समाधान करने के लिए कोई प्रश्न पूछेगा कोई उत्तर देगा, उसमें क्या कमती ज्यादा दूसरे बताएगा, फिर ये प्रश्न पूछेगा उत्तर दे, ऐसे प्रश्न उत्तर करे, ऐसे जो करते हैं इसका नाम है वाद कथा, एक कथा है वाद कथा, तत्व जिज्ञासु की कथा, तत्व निर्णय के उद्देश्य से, ये उद्देश्य नहीं हो जाता है कि उसको मैं हरा दूं या मैं जीत लूं, हारना जीतना नहीं, विचार करना, प्रश्न उत्तर होगा, गुरु शिष्य की जो कथा शास्त्र में जो आया ये सब वाद कथा में आता है, शिष्य प्रश्न करेगा गुरु उत्तर देंगे, कभी गुरु भी पूछते हैं शिष्य से बोलो कुछ गलत होता है तो बताते, ये वाद कथा, परस्पर शिष्यों का भी प्रश्न उत्तर होता है वाद कथा, सब जानते हैं सब मिलकर थोड़ा इसके विचार करेंगे, विचार करके वो उससे ज्ञान वृद्धि होती, संशय की निवृत्ति होती, किसका कोई संशय है तो कहीं कुछ भ्रांति है तो भ्रांति निवृत्ति होती, कभी कभी इसे हो जाता है पर मालूम था जानता था अभी विस्मरण हो गया, फिर विचार करेंगे तो ज्ञान दृढ़ होता है, इसलिए ये वाद कथा करनी चाहिए, विपरीत भ्रांति की निवृत्ति, अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति, असंशय की निवृत्ति, भगवान भाष्यकार कहते विपरीत नाश अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति संशय निवृत्ति, इसलिए विद्वान का संबंध इसे करके विचार करना चाहिए, इसे शास्त्र श्रवण करने वाले भी मिल करके जितने सामर्थ्य थोड़े थोड़े विचार करे, जब सुना श्रवण क्या विचार करके थोड़ा तैयार करे, आज कोई तैयार करके आए क्या उद्गीत उपासना बताने के लिए क्या काल जो बताया था किस किस पर्याय में कैसे उपासना करना मालूम है, बता सकते पुस्तक क्यों दिखती, हम जो पूछते उधर दिखती हाँ भी कहते उधर दिखती अच्छा